श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 16। द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरक्षाक्षर एव च शरह सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी शर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत या अक्षर कहलाता है। श्रीला बलदेव विद्याभूषण की टीका को देख लेते हैं पहले। वो कहते हैं कि भगवान यहाँ पे जो बद्रायण के रूप में, बादरायण के रूप में वेदों को दिए हैं, वही भगवान श्री कृष्ण वेदों के सार वस्तु को समझा रहे हैं यहाँ पे। और वो कह रहे हैं कि लोक शब्द का अर्थ है जिससे सत्य का, सत्य को समझा जाता है, सत्य प्रकाशित प्रकाश प्रकाशित होता है। लोकायते, इसका अर्थ है, लोक का अर्थ हो गया वेद। तो यानी कि वेदों में दो प्रकार के जीवों, पुरुषों, पुरुषों यहाँ पे द्विविभक्ति है, द्विवचन है, तो इन दो प्रकार के जीवों के बारे में बताया जा रहा है। और उसको यहाँ पे बोल रहे हैं वो कौन है वो लोग, तो वो हैं शर और अक्षर। शर का अर्थ है जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनका शरीर जो है वो नाशवान है। हम सभी जो बद्ध आत्माएं हैं, जो इस भौतिक शरीर में बद्ध हैं, तो हमारा क्योंकि शरीर परिवर्तित हो रहा है, जन्म लेता है, कुछ समय रहता है, कुछ वस्तुएं उत्पन्न करता है, उसके बाद वृद्ध होता है और मर जाता है, तो इस कारण से लग रहा है कि जीव भी परिवर्तित हो रहा है। ऐसे तो जीव परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन जीव क्योंकि शरीर से बंधा हुआ है, भौतिक शरीर से, इस कारण से परिवर्तन अनुभव कर देखा जाता है, परिवर्तन अनुभव किया जाता है। और जो दूसरा जीव है वह अक्षर शरीर, यानी कि स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शरीर में स्थित है, यानी नित्य मुक्त जीव जो भगवान के संग आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, तो वह नित्य रूप से मुक्त हैं, क्योंकि उनका भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है। आगे और बताया जा रहा है, सर्वभूतानि सर्वाणि भूतानि, अर्थात जितने ब्रह्मा जी से लेकर नीचे तक जितने भी जीव हैं, उन सबका शरीर भौतिक है, और शरीर परिवर्तन होने के कारण उन्हें शर कहा जाता है। और जबकि अन्य जीव जो हैं, जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, वो कूटस्थ रहते हैं। कूटस्थ मतलब एकत्व में रहते हैं, अर्थात उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आता, उनका आध्यात्मिक शरीर रहता है, लेकिन वो अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए कृष्ण की सेवा करते हैं, भगवान विष्णु की सेवा करते हैं आध्यात्मिक जगत में शाश्वत रूप से। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है, इसको अभी हमने समझा दिया था। सार संक्षेप है दो प्रकार के जीवों के बारे में वर्णन। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है, दो श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, च्युत यानी शर तथा अच्युत मतलब अक्षर। च्युत का एक अर्थ भी है अपनी स्थिति से च्युत हुए। इस समय जो लोग बद्धात्मा है, हम सब लोग अपने स्वरूप से च्युत हैं, अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, लेकिन अच्युत मतलब जो अपने वास्तविक स्थिति भगवान के दास के रूप में, उससे कभी च्युत नहीं हुआ हो, तो वो नित्य मुक्त लोग हैं। जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश विभान अंश हैं, अर्थात इसको समझ लेना चाहिए, इसका अर्थ है कि हम लोग पृथक रूप से, हमारा अस्तित्व है, हम भगवान पे आश्रित हैं, भगवान की शक्ति है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान बन जाएंगे या भगवान में थे और भगवान से कट करके अलग हुए हैं, ऐसा नहीं होता है। सनातन रूप से हमारा अस्तित्व रहता है, हमारा व्यक्तित्व रहता है। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीवभूत कहलाते हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि अब कब संसर्ग हुआ, इसको ना पूछा जाए, क्योंकि इसके संबंध में हमने 13वें अध्याय में खूब चर्चा कर ली थी कि जीवात्मा का, बद्धात्मा का भौतिक जगत से संसर्ग जो है उसकी कोई आदि नहीं है, आप ट्रैक नहीं कर सकते कि कब हुआ ऐसा, इसको अनादि कहा जाता है, बिगिनिंग लेस इग्नोरेंस। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह कि दोनों में भिन्नता नहीं है। भिन्नता नहीं अर्थात जो नित्य मुक्त जीव हैं वो कृष्ण की सुख के लिए ही कामना करते हैं, उनका कृष्ण के प्रयोजन के अलावा, कृष्ण को संतुष्ट देने करने के प्रयोजन के अलावा या भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के प्रयोजन के अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। और बद्धात्माओं के संग दिक्कत ये है कि उनकी अस्तित्व तो रहता है लेकिन कृष्ण को संतुष्ट करने की बजाय वो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के प्रयोजन में लगे रहते हैं, तो ये भिन्नता रहती है। तो एकत्वता है इच्छाओं की एकत्वता में, ऐसा नहीं है कि जीव जो है वो भगवान में जाके मिल जाता है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं, निसंदेह है आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं, अतः यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। कहने का अर्थ ये है कि आध्यात्मिक जगत में कोई भी जीव भगवान से विद्रोह की भावना को नहीं रखता, वो कृष्णोन्मुख रहते हैं, विष्णुन्मुख रहते हैं, भगवान की तरफ उन्मुख रहते हैं। लेकिन यहाँ के जो जीव हैं भौतिक जगत के जीव, वो सभी प्राय जो अगर शुद्ध भक्त नहीं है तो सभी लोग भगवान से उन्मुख नहीं होते, भगवान की तरफ उन्मुख नहीं होते, अपितु भगवान से विमुख रहते हैं। तो ये भौतिक जगत का एक मुख्य लक्षण है। तो यही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि भले ही आध्यात्मिक जगत में सृजन की कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ के जो भावना है, मनोभावना है कि सभी लोग भगवान के निस्वार्थ सेवा में लगे रहते हैं। जो कि भौतिक जगत में सृष्टि होती है ताकि जो जो जीव, हम सब लोग जो भगवान से विमुख हैं, वह अपने इस अच्युत अवस्था अर्थात निस्वार्थ प्रेममयी स्थिति को वापस पुनः प्राप्त कर सकें, वापस तो नहीं कहना चाहिए, प्राप्त कर सके, क्योंकि अनादि काल से तो हम लोग भगवान से विमुख ही हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथानुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं, वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, इसलिए बोला गया यहाँ पे आया था लोके द्वाविमौ पुरुषो लोके, लोके अर्थात वेदों में, वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा पांच इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं जो परिवर्तनशील हैं। तो ये तो स्पष्ट है, हमारा मन लगातार परिवर्तनशील है, हमारी इंद्रियां परिवर्तित हो रही हैं। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहेगा, बहुत स्पष्ट है, इसमें कुछ भी समझाना नहीं है। जो खा रहे हैं पी रहे हैं उसके प्रभाव से हमारा शरीर निरंतर बदलता बदल रहा है। चूंकि पदार्थ बदलता रहता है इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं। ये भी समझ में आ रहा होगा कि जीवात्मा ऐसा लग रहा है कि बढ़ रहा है, हम लोग बोलते भी सामान्य भाषा में कि मैं बड़ा हो रहा हूं, मैं वृद्ध हो रहा हूं, लेकिन जीवात्मा ना तो वृद्ध हो रहा है ना बढ़ रहा है, वह परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है शरीर और मन के परिवर्तन के कारण कि जीव परिवर्तित हो रहा है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता। ये भी समझते हैं कि स्पिरिचुअल जगत में स्पिरिचुअल बॉडी आध्यात्मिक शरीर सच्चिदानंदमय शरीर होने के कारण वहां उसको इस प्रकार का परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब जीव को इस प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाता है तो फिर वह परिवर्तनशील इस भौतिक जगत में भौतिक शरीर को धारण नहीं करता है। भौतिक जगत में जीव छह परिवर्तनों से गुजरता है। जीव मतलब जीव का शरीर, भौतिक शरीर, जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। अर्थात जन्म होता है, उसके बाद कुछ समय के लिए बढ़ता है, फिर रहता है, साथ ही साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स, कुछ बच्चे इत्यादि होते हैं लोगों के, फिर इसके बाद धीरे धीरे क्षय होने लगता है, अंततः का विनाश हो जाता है। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता, वहां ना जरा है, ना जन्म और ना मृत्यु, एकदम स्पष्ट है। वे सब एक अवस्था में रहते हैं। अर्थात पहली बात तो समझ में आना चाहिए, एक अवस्था का अर्थ ये नहीं है कि अगर वो वृद्ध है तो उनको अब शाश्वत रूप से वृद्ध ही रहना पड़ेगा। वहां वृद्धावस्था का कोई मतलब ही नहीं है, वहां सबके शरीर चिर रूप से हमेशा के लिए शाश्वत रूप से युवा ही रहते हैं। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि वहां पे भी बुड्ढे होंगे और बुड्ढे जो है वो भी शाश्वत रूप से बुड्ढे ही रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। वहां पे जो जीव जो शरीर है वह हमेशा हमेशा के लिए युवा रहता है और इस प्रकार के परिवर्तनों से वो प्रभावित नहीं होता, जो हमने भी चर्चा किया था, जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय और विनाश। शरह सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव आदि जीव ब्रह्मा से लेकर शूद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है वह अपना शरीर बदलता है, अतएव ये सब शर अच्युत है, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहते हैं। देखिए, इस जगत में ब्रह्मा हो, इंद्र हो, चाहे कोई भी पद का व्यक्ति हो, उसमें और उसके भौतिक शरीर में जिसको प्राप्त है अंतर होता है, वो शरीर स्पिरिचुअल नहीं होता, तो उसमें इस प्रकार का क्षय और अंतोगत मृत्यु का होना अवश्यंभावी है। फिर भी जो देवता इत्यादि हैं वह कभी बुढ़े नहीं होते हैं, लेकिन उनको अंतोगत मृत्यु प्राप्त होती है। जैसे ब्रह्मा जी से जब हिरण्यकश्यपु ने बोला था कि मुझे अमृत दीजिए, तो उन्होंने बोला कि मैं स्वयं अमृता को प्राप्त नहीं हूँ, तो मैं कैसे आपको अमृत दे सकता हूँ। तो यहाँ समझ देना चाहिए कि ये जो मृत्यु है वह तो सबको प्राप्त होगी, तो इस कारण से व्यक्ति को भगवान के धाम जाने का प्रयास करना चाहिए, जहाँ उसको एक चिन्मय स्पिरिचुअल शरीर प्राप्त हो जाएगा, जिसके द्वारा वह भगवान के संग हमेशा हमेशा के लिए रह सकता है। इस पर विश्वास करना चाहिए। देखिए, भगवद्गीता कोई एंटरटेनमेंट वाला शास्त्र नहीं है कि बस हमें अपने थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करने के लिए पढ़ लिया। हमें इस पर विश्वास होना चाहिए और इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए कि हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सकें। और उसका मुख्य तरीका है भगवान का नाम का जप, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और दृढ़ता से इंद्रियों को से कृष्ण की लगातार सेवा करते रहें, ताकि हम इस अक्षर स्थिति को प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाएं। हरे कृष्ण।